द्रव्य का लक्षण ही सत है, यानी प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है। तो जिसका जिसका अस्तित्व है उसका अगर हम अपने ज्ञान में स्वीकार नहीं करेंगे, मान्यता में उसका स्वीकार नहीं करेंगे तो असत्य हो गया। क्योंकि जो अस्तित्व में वस्तु है, मैं स्वयं अस्तित्ववान पदार्थ हूँ, अन्य भी पदार्थ अस्तित्ववान है। जैसे इस विश्व में मैं हूँ वैसे अन्य जीव भी है, पुद्गलादि अन्य द्रव्य भी है। जो है उसका अस्थिर रूप से स्वीकार होना यही तो मूल में सत्य है। और जो सत स्वरूप वस्तु है, सत द्रव्य लक्षण, और वो कैसा है सत? तो उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत, तो हर समय वो उसकी ध्रुव रहते हुए, कायम रहते हुए कायम परिणमना, ये द्रव्य का स्वभाव है। यानी उसका परिणमन भी एक समय का सत है और वो द्रव्य तो अनादि अनंत सत है। तो ये अनादि अनंत सत स्वरूप जो मैं स्वयं हूँ उसका स्वीकार करके, उसका स्वरूप जानकर उसी में एकाग्र होना, ये खरेखर तो सत्य धर्म है। परंतु उसको समझाया जाता है या उपदेश की भाषा में वचन के द्वारा ये इस धर्म का स्वरूप बताया जाता है, जिसको हम कहेंगे उत्तम सत्य धर्म। ये रत्नकरण शाकाचार के आधार से हम उसकी कुछ बातें यहाँ देखते हैं कि अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते। वैसे तो पूजा तो हम अर्घ्य तो दिए हैं, तो वहाँ कठिन वचन मति बोल वगैरह हमने देख लिया है। यहाँ तो कहते हैं जो सत्य वचन है वह ही धर्म है। यह सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है, अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है और इस भव में तथा परभव में सुख का करने वाला है, सभी के विश्वास करने का कारण है। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। जिस दिन जिस लक्षण की मुख्यता है उसको मुख्य करके वहां उसका कथन हो जाता है। अभी उसमें बहुत सारा सत्य की महिमा गाई है उन्होंने। यहाँ तो कहते हैं सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं, सत्य सहित ही अनुव्रत महाव्रत होते हैं। सत्यानुव्रत है, सत्य महाव्रत है, और वो भी जो अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए बाकी सब व्रत होते हैं। तो वो सत्य धर्म यानी जो अहिंसक वचन होंगे वही उसमें है। किसी की निंदा करने वाले, किसी की हिंसा करने वाले जो वचन हो, या किसी की अनुमोदना करने वाले, कराने वाले वचन हो, वो सारे ही हिंसा में आ जाते हैं, वो सब असत्य में आ जाते हैं। यह कहते हैं सत्य से सभी आपत्तियों का नाश होता है, अतः जो भी वचन बोलो वह अपने और पर के हित रूप कहो। मुनि कैसा बोलते हित मित प्रिय, हितकारी यानी कौन सा हित बताते हैं? अपने अपना स्वरूप कैसे पहचानना है वो हित है। मित यानी बहुत गप्पे नहीं लगाते, थोड़े में बता देते हैं। और प्रिय वचन बोलते हैं, किसी को दुखी करने वाले वचन वो नहीं बोलते। यह भी कहते हैं कि जो भी वचन बोलो वह अपने और पर के हितरूप कहो, प्रामाणिक कहो, किसी को दुख उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहो, दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं कहो। वो आती है ना स्टोरी कि मुनिराज बैठे थे, कोई वहां शिकारी आता है और पूछता है ये तो ये कहाँ चला, ये प्राणी कहाँ, हिरण कहाँ भागा। वो मौन रखेंगे, वो ये नहीं कहेंगे इधर गया क्या उधर गया, क्योंकि उसके पीछे अगर सत्य नहीं, नहीं हम तो सत्य बोलने वाले, इधर गया कहेंगे तो उसकी तो हत्या हो जाएगी। गर्व रहित होकर कहो परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन को। क्या कहते हैं कि ये जो बात चल रही ना, हमें इतने सिद्ध है फिर अरियंत होते हैं, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोई है नहीं केवल, पर जहाँ उसकी बात करेंगे तीन लोक में क्या क्या कैसा वस्तु का स्वरूप है या कहाँ कैसी रचना है वो बताएंगे, वो सारा अस्तित्व बताने वाला है। नहीं तो कहने वाले भी मिलते हैं स्वर्ग नरक कुछ होता ही नहीं होता, तो आपको कुछ चिट्ठी वगैरह कुछ आती है ना वहां से मैसेज मोबाइल पर। यहाँ कहते नास्तिकों के वचन पाप पुण्य का अभाव और स्वर्ग नरक का अभाव बताने वाले वचन नहीं कहो। यानी जो जिनेंद्र भगवान ने जो बातें बताई है उसका विरुद्ध करके नहीं, ऐसा होता ही नहीं कहने वाले वचन मत कहो। कहते देखो वचन सत्य वचन बोलने के लिए सत्य परिस्थिति समझना आवश्यक है, क्योंकि सत्य जाने बिना सत्य वचन कहेंगे कैसे, इसलिए सत्य जानना चाहिए। तो सत्य हम केवली थोड़े ही सत्य जानने को, परंतु जो जो केवली है, जिन्होंने प्रत्यक्ष जानकर जो बताया है और जो मार्ग हमारे मुनियों ने जो लिख के रखा है वो भी सत्य है। उस सत्य को हम जानेंगे तो हम सत्य वचन कह सकेंगे, नहीं तो अपनी कल्पना से चाहे जो कुछ कह दे वो सत्य नहीं कहलाएगा। इसलिए हम स्वाध्याय भी करते हैं तो सत्य वस्तु स्थिति रियलिटी क्या है वो समझने के लिए करते हैं। यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना, यह जीव अनंतानंत काल तो निगोद में ही रहा। अभी वही बात सुनी ना आपने जीव समास में, वहां पर वचन रूप वर्गणा ही ग्रहण नहीं की, क्योंकि उन जीवों की योग्यता नहीं है केंद्रियों की वचन बोलने की। तो वचन कौन से जीवों के होता है, कहाँ से शुरू होता है वचन बोलना, हाँ क्या कहते संगी बच्चे, आप क्या कहते हैं? द्विंद्रिय से है उनके, क्योंकि भाषा वर्गणा शब्द नहीं होते उनके, यानी अक्षर रूप नहीं है उनकी, संकेतात्मक कुछ भाषा होती है, परंतु भाषा तो है उनके परंतु अक्षर रूप वचन उनके नहीं होते। हाँ देखो यहाँ कहते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें भी अनंत काल रहा, क्योंकि एक इंद्रियों में अनंत काल रहा तो इन्हीं पर्याय में घूमता रहा। वहां तो जिह्वा इंद्रिय ही नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई, जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ। देखो विकल त्रय शब्द सुना होगा, अब यहाँ विकल चतुष्क कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? एक इंद्रिय को विकल इंद्रिय में नहीं है, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इसको विकल चतुष्क कहेंगे, और अकेले विकल त्रय कहेंगे तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय। तो कहते जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रिय तिरंच में उत्पन्न हुआ, वहां जुहा इंद्रिय पाई तो भी अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं है। अक्षर रूप वचन नहीं थे, जो हम ये जो अन्य जीव देखते हैं तो उसमें भी संकेतात्मक कुछ आवाजें निकलती है, पर उसमें से आप जैसे अक्षर की रचना और शास्त्र की जो रचना आदि होती है तो उनमें तो नहीं पाई जाती है। एक मनुष्यपने में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है, ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना यह बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो ढोर तिर्यंच के भी होते हैं। खाना पीना, काम भोगादि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आभरण वस्त्रादि ये जानवरों को, आभरण यानी आभूषण अलंकार वस्त्र, उनके प्राप्त होते कि नहीं प्राप्त होते? अरे हाथियों की इतने वो अलंकार चढ़ाते हैं, बैलों पर वो तो पोड़ा पोड़ा से गिर, और हमारे घर में कोई कुत्ते बिल्ली है उसको भी तो कितने उनके क्या क्या होते हैं, अमेरिका में तो उसके क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम करके चले जाते हैं और क्या क्या होता है। आवरण वस्त्र आदि, क्योंकि वहाँ बच्चों के कुछ टाइम नहीं ना, वो तो अपना अपना घर बसा लेते हैं बड़े होने पर, तो बुढ़ापे में वो तो कुत्ता बिल्ली सहारा होते हैं। तो वहाँ ऐसी कितनी घटनाएं बनी है, ये हमारे अमेरिका से आके यहाँ से मालूम है ना, वहाँ पर चलता है उनके लिए स्पेशल फूड, उनके लिए स्पेशल सारे उनके लिए जो पलंग वगैरह सब स्पेशल होता है सब रहने के लिए। ऐसा पुण्य लेकर तिरंच में उत्पन्न होने वाले जीव है। हाँ ये कहते हैं गाड़ी में बच्चों को तो वो तो सीट बेल्ट वो बांध के रखते हैं, और कुत्ते वगैरह तो फ्री आगे के पीछे सीट पर इधर उधर जंप करते रहते हैं। सुबह मालिक कुत्तों को लेकर घूमने चला जाता है, एक हाथ में वो झाड़ू होता है, एक हाथ में प्लास्टिक की थैली होती है, जहाँ जहाँ वो शिफ्ट करे उसको तो वो, क्योंकि वह ऐसे रास्ते पर छोड़ कर नहीं चलता है। क्या करे, यहाँ क्या लिखा, आभरण वस्त्र आदि कुकर, वानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। हमने तो देखा होगा ना, तो ये ऊंट को भी सजाते होंगे और क्या क्या करते हैं। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है, क्योंकि वो तो उससे मन सहित वाले वो वचन होते हैं, तो उनमें तो अक्षरात्मक रचना भी होती है, तो यही प्राप्त होती है। देखो द्विंद्रिय जीव, उनको जीवा है तो वचन है, तीन इंद्रियों को भी है, चतुर इंद्रियों को भी है, तो वो बोलते हैं, सुनते हैं क्या? कर्मेंद्रिय तो पंच इंद्रियों को होता है, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर इंद्रिय बोलते हैं पर सुनते नहीं है, बराबर? विकलत्र जो है वो बोलते हैं सुनते नहीं है। हम भी क्या करते हैं, सुबह भगवान को गा गा कर सुनाते हैं, बोलते बहुत है परंतु भगवान ने जो बताया वो सुनते नहीं है, तो हमारी पोजीशन कैसी हुई वो हम ही विचार करें। विकलत्र जैसे हो गए, हम तो भगवान को सुनाने को आते हैं, हमको सुनने के लिए टाइम कहाँ है? भगवान को सुना दिया कोई भक्ति वगैरह और फिर चले जाते हैं घर में, और हमें लगता है कि हमने धर्म किया, पर धर्म क्या है वही मालूम नहीं है तो करेंगे कैसे? यहाँ क्या कहते, देखो जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया उसने समस्त जन्म बिगाड़ लिया। यह वचन की मुख्यता से बात हो रही है, बाकी यही जो मनुष्य भव पा कर भी उसने धर्म क्या है वो नहीं सुना है, नहीं समझा है, उस स्वरूप अपने को उसमें स्वयं रुचिपूर्वक उसमें आगे नहीं बढ़ा है, तो कहते उसका मनुष्य जन्म बेकार है। जैसे अभी तक जो जन्म मरण करता आया है तो इस भव में भी आया है, जन्म पाया है, छोटे से बड़ा हो गया है, अभी जो कुछ लौकिक एजुकेशन कर ली उसने, पैसा कमाया, पैसा भोगा और आयु पूर्ण होते मरकर चला गया, हमने तो ये अनादि से यही तो किया है उसने, कभी देव हुआ, कभी नारकी हुआ, कभी तीर्यंच हुआ, कभी क्या क्या हुआ, यही साइकिल अनादि से चल रहा है। अनादि काल का एहसास हमको नहीं होता है, यदि अनादि का एहसास हो जाए वो पंच परावर्तन का स्वरूप सुनकर तो अंदर से ऐसा भय से कांपने लगता है, नहीं तो बिल्कुल निर्भय निडर होकर अपने जो रूटीन अपनी लाइफ स्टाइल है उसमें चलता रहता है, उसको विचार तक नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका फल मुझे क्या मिलेगा। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज प्रतीति, धर्म कर्म, प्रीति भय इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप कार्य है वे सभी वचन के अधीन है, यानी बोलने से ही वो सारे कार्य यहाँ हो रहे हैं। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़ कर दूषित कर दिया, अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित नहीं करो। अब यहाँ परमागम में चार प्रकार के असत्य के त्याग की बात आती है, वो कौन कौन से है तो कर्णानियोग का कथन पहले बता रहे हैं। जो है विद्यमान अर्थ, अर्थ है पदार्थ, जो वस्तुएं है उसका निषेध करना ये पहला असत्य हुआ, तो विद्यमान अर्थ का निषेध करना वह प्रथम असत्य है। अभी उसमें जो कोई नियम है कर्णानियोग के उसको मानना नहीं है, जैसे यहाँ तो उदाहरण ये दिया है कर्मभूमि के मनुष्य तीर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं होती ऐसा कहना वो असत्य है, क्योंकि मृत्यु तो हो सकती है विष भक्षण से, एक्सीडेंट से, अन्य अन्य कारणों से, भले वो बड़ी आयु बांध के आया है, 100 साल की आयु बांध के आया है, पर हम देखते हैं ना 100 साल की आयु बांधा है लेके आया है तो उसका नेक्स्ट रोग की आयु का बंधन कब हो सकता है, 2/3 बीतने पर और 1/3 बाकी है तभी। अब 100 साल का 2/3 और 1/3 करो, परंतु हमने ऐसा भी देखा है कि कोई तो 25 साल का युवा है और उसी में कुछ एक्सीडेंट में या अन्य किसी कारण से मर जाता है, तो क्या हुआ वो 100 साल का क्या हो गया? उसको कहते अकाल मृत्यु, उसको कहते कदली घास, कदली घास यानी उसके जो रिमेनिंग जितने निषेक थे एक एक समय वाले वो सारे कटडाउन होकर थोड़े निषेकों में आ मिलते हैं और फिर जाके बाद में आयु बांध कर उसका मरण हो जाता है। तो कहते कि वो ऐसा नहीं होता ऐसा कहना ये असत्य है। देव नारकी भूमि के मनुष्यों में ऐसा घात नहीं होता, ऐसा अकाल मृत्यु नहीं होता, फिर भी वहां होता ऐसा कहेंगे तो उल्टा हो गया। केवली भगवान को आहार होता है, कौलाहार होता है ये कहना ये असत्य वचन है। स्त्री को मोक्ष होता है कहना वो असत्य वचन है। अभी ऐसे ही जो कुछ भ्रम रूप जो बातें हैं, पुण्य करते करते मोक्ष हो जाएगा, ये क्या है? सत्य वचन थोड़ी, असत्य वचन, इसलिए इनका निषेध करते हैं। अभी इसके आयु के बारे में कोई प्रश्न हो तो इसको छोड़ देते हैं। अभी हम पहले में पहले कर्णानियोग के कथन में हमने क्या देखा था? जो विद्यमान है उसका निषेध करना, वो असत्य है। अब कहते जो अविद्यमान है वो है ऐसा कहना, वो भी असत्य है। जैसे देव है वो भोजन करते हैं ऐसा कहना, व्यंतर आदि को वो तो थाल भर के उनको खिलाने के लिए वो रख देना, ये क्या है? देव के तो अमृत का भोजन है, वो कोई हमारे जैसा मुंह से खाते नहीं है। अभी द्रव्यनियोग में वस्तु स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप से कहना वो असत्य है। जैसे द्रव्यनियोग में तो हम कहते उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त हाजिर होता जरूर है, कारण रूप से निमित्त को कहते भी है, वो उपस्थित होता भी है, परंतु वो परद्रव्य का कार्य नहीं करता। ऐसा होने पर भी निमित्त से ही कार्य होता है ऐसा कहना वो असत्य हो गया। चाहे जैसे आपकी जो चाहे जैसी पर्याय हो सकती है, क्रमबद्ध होती नहीं है, जो जो सिद्धांत बताए हैं उससे विरुद्ध कहना वो सारा असत्य वचन हो जाता है। इसलिए सत्य क्या है जाने बिना हम सत्य कह कैसे सकेंगे? इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ही लिए, दुनिया के लिए नहीं, अपने ही लिए शास्त्रों में से ग्रंथों के अभ्यास पूर्वक हमें सत्य जानना जरूरी है। अभी चरणानियोग में बताते हैं किसको किसको असत्य कहते हैं, तो कहते गर्भित वचन है, सावध्य वचन है, अप्रिय वचन है, सावध्य नहीं हिंसात्मक जो हिंसा करने वाले, ये सारे को यहाँ पर असत्य वचन कह दिया है। उसके बहुत सारे उन्होंने भेद करके भी बताए यहाँ पर, देखो हम थोड़ा पढ़ते उसमें, पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित और अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वो गर्हित वचन है। दूसरे के विद्यमान दोष हो या दूसरे में नहीं है ऐसे दोष भी उसके पीछे पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश हो जाए, जीविका का विनाश हो जाए, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंदे हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, ऐसे वचन कहना वो पैशून्य नाम का गर्हित। अभी उसके भेद बताए। अभी दूसरा हास्य भी होता है ना, जैसे किसी की टीका टिप्पणी करने, व्यंग करके हम हास्य करते हैं, हंसी मजाक करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो भी कैसा है? गर्हित वचन है। कर्कश यानी क्या? किसी को गाली देना, तो गधा है, मूर्ख है ऐसा कहना, उसको कहते हैं कर्कश वचन। असमंजस यानी क्या है? कि देश काल की अयोग्य ऐसे वचन कहना, दूसरों को महासंताप हो जाए ऐसे वचन कहना, वो सारे असमंजस होते हैं। और जो प्रयोजन से रहित बिना काम के कुछ भी बकवास करते रहना, बकबक करते रहना, उसको कहते प्रलपित, यानी प्रलाप जिसको हम कहेंगे। ये सारे ही कैसे हुए? गर्भित वचन, इसका त्याग होना चाहिए। दूसरी बात, सावध्य वचन त्याग। सावध्य समझते ना, यानी जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लूट जाए, देश के स्वामियों में महाभैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, छोकाय के जीवन का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध्य वचन है। अभी क्या चल रहा है सब? ऐसे ऐसे कोई अपने भड़काते हैं अपने अपने कौम के जीवों को, और वो तो अपना घात करके भी दूसरों की हिंसा करते हैं, तो उनको उकसाने वाले ऐसे जो वचन है वो सारे सावध्य वचन है। अप्रिय वचन के लिए बताते हैं। अभी उसमें कर्कश है, कटुक है, बहुत सारे उसके अलग अलग भेद बताए हैं, और उसके उन्होंने अलग अलग पद्धति से विस्तार से यहाँ बातें भी कही हैं। वो सत्य के भी जीवकांड आदि में सत्य के भी भेद बताते हैं। जैसे जनपद सत्य है, अपेक्षित सत्य है, यानी प्रतीति सत्य है, ऐसे सत्य के भी भेद बताएं। जैसे कोई हम अपने देश में जिसमें अभी हम भात कहेंगे, कहीं साउथ में उसको अन्नम कहेंगे, कहीं उसको चावल कहेंगे, हाँ अंग्रेजी में राइस कहेंगे, वो क्या है, वो जनपद सत्य है। ऐसे अलग अलग जैसे कोई होते हैं रिलेटिवली बताते हैं, इससे ये छोटा है कहना परंतु दूसरे से बड़ा हो सकता है। ये ऐसे 10 प्रकार के सत्यों का भी उसमें वर्णन आता है, तो वो यहाँ पर भी बताए उन्होंने, संयम प्रकाश में भी उसी की बात की है। यहाँ पर भी वही बात बताते हैं, देखिए संयम प्रकाश में से मैं कुछ बातें बता रही हूँ। असत पुरुषों के सामने मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है। देखो पहले में पहले क्या बताते हैं, प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलना चाहिए, स्व के और पर के लिए हितकारक वो वचन बताने चाहिए। प्रिय और परिमित, परिमित यानी हम हितमित जो कहते हैं लिमिटेड, वचन का उच्चारण करना ही सत्य है, वही श्रेष्ठ है। असत पुरुषों के सामने मौन धारण करना अच्छा है। हम देखते हैं कोई तीव्र मिथ्या दृष्टि है, ये बातें मानने वाले नहीं है, तो उसको समझाने की कोशिश भी नहीं करना, मौन रखना। कभी कभी सामने से भी ऐसे कुछ कुछ जिसको युक्ति या ऐसे कुछ तर्क लड़ाते हैं कि वो तो समझना नहीं चाहते हैं, वो तो बस आपके ऊपर कुछ आरोप करना चाहते हैं, तो कहते हैं मौन रखना अच्छा है। क्योंकि आचार्यों ने प्रशस्त है सज्जन पुरुषों के मध्य उत्तम वचन बोलने को सत्य कहा है। इसका आशय यह है कि ध्यानादि कर्तव्य में जब चित्त ऊब जाता है, थक जाता है, अपनी भाषा में जब अंतरंग में जो स्थिरता नहीं होती, क्योंकि हमने देखा था कि शुद्धोपयोग भी अंतर्मुख से अधिक टिकता नहीं है, तो जब वहाँ जीव अंतरंग में एकाग्र नहीं रहता तो उनके सहज रूप से उपदेश देने के आदि भाव आते हैं, तो उस समय यदि उपदेशादि के लिए वचनोच्चारण करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बोलना इस समय उपयुक्त है या नहीं। इस संयम प्रकाश, ये जो मेरे हाथ में पूर्वाधव मुनि धर्म की बात है, दूसरा एक वॉल्यूम है जो गृहस्थ धर्म की बात आती है, यहाँ मुनि धर्म की अपेक्षा 10 धर्म का वर्णन किया है, इसलिए साधु की बात यहाँ भी। यहाँ कहते जन समाज कैसी प्रकृति वाला है, शांत स्वभाव है या उग्र स्वभाव है। शांत स्वभाव जन समूह में वचनोच्चारण करना, धर्म का व्याख्यान आदि करना स्व पर का कल्याण करने वाला होता है, और जो उग्र स्वभाव जन समूह हो तो मौन धारण कर लेना अथवा अपने निज कार्य स्वाध्याय में लग जाना, यानी अपना स्वाध्याय करना। वो उनको मूर्ख हो गए जो अशांत जन समुदाय है, तो उसके सामने ये उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है, स्वयं अपना स्वाध्याय करे। अन्यथा सदुपदेश का भी दुरुपयोग हो जाता है और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। हमने आपको उबले हुए तेल की उपमा दी थी ना, कि जो विषय कषायों में जिसकी रुचि है ऐसे जीवों को धर्मोपदेश दे तो भी अंदर से भड़क उठता है, इतना ही नहीं उपदेश देने वालों के लिए विघ्न उत्पन्न करता है। ये तो चिड़िया की कहानी मालूम है कि नहीं मालूम, बंदर और चिड़िया क्या था ये, तो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है झाड़ के ऊपर और उसी पेड़ पर एक बंदर रहता है, इधर उधर कुदा कुदी करता रहता है, तो चिड़िया उसके अरे बंदर भाई तो अपना अपना घर क्यों नहीं बनाता, अरे मेरे तो क्या है चोंच से मैं तिनका तिनका लाकर मैंने अपना घोंसला बना दिया, तुझे तो हाथ पैर है और इतनी बुद्धि है तो क्यों नहीं बनाता, और तुझे तो इतनी यहाँ से वहाँ भागने की दौड़ने की भी शक्ति है तो तू अपना घर बना ले, तो हंसी मजाक करके टाल देता है। बारंबार 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 वही उसको बताती रहती है, अरे तू अपना घर बना ले, अभी बरसात के दिन आने वाले हैं, अभी तू घर क्यों नहीं बना रहा, अभी क्यों नहीं बना रहा, तो मुझे बहुत स्याना समझती तू अपने को, चल ऐसा करके उसने उसका घोंसला ही तोड़ दिया। ऐसे ही जिसको रुचि नहीं है, जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, उनके उपदेश करने जाए तो ये अपने स्वाध्याय में ही विघ्न उत्पन्न करेंगे। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों के सामने कुछ उपदेश देना योग्य नहीं है, मौन रखना अच्छा है। अभी यहाँ वो 10 भेद है, सत्य के 10 भेद यहाँ बताए हैं। नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संवृत्ति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य, समय सत्य, ऐसा भी आता है ना, संभावना सत्य। संभावना क्या होती है? जैसे ऐसा आता है, इंद्र में कितनी ताकत है, जम्बूद्वीप पलटा दे भी इतनी सामर्थ्य, तो कितनी बार उसने जम्बूद्वीप पलटा दिया? एक बार भी नहीं। तो उसके लिए इतनी उसमें ताकत है कि यदि वो उस ताकत से जम्बूद्वीप भी पलटा सकता है, परंतु कभी पलटाने वाला नहीं है। तो उसकी सामर्थ्य बताने के लिए ऐसे जो वचन होते हैं उसको भी सत्य कहते हैं, उसको संभावना सत्य कहते हैं। ये जो भी हमने इसमें से पढ़ा वैसे कितनी बातें यहाँ रिपीटेडली बताया है। देखो असत्य के बारे में कुछ बातें यहाँ बताई है। अन्य दुर्गुणों से दूसरे मनुष्यों का उतना कल्याण नहीं होता जितना कि असत्य वचन से होता है। इसी असत्य वचन से संसार में मिथ्या शास्त्रों का प्रचार हुआ है। ये मिथ्या जो रचनाएं हुई है वो सारा असत्य है, और इसी के कारण लोगों का कितना बुरा हो गया है। आज पूजा में भी आए ना, वचन झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नार गया। वो कथा मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम? ये पर्वत और नारद दो थे ना, एक ही गुरु के, हाँ क्या कह रहे, एक ही गुरु के चेले थे, तो उन्होंने सारी विद्या, इन्हें एक राजा हुआ और बाकी ब्राह्मण का, तो जिस ब्राह्मण ने सिखाया था वो ब्राह्मण का एक पुत्र था, और दूसरा हुआ वो तो राजा हो गया, तीसरा उनका जो मित्र था, तो अज शब्द से वो बात चालू हुई कि जो अज है यानी जो गौ में डालते हैं, अज उसका अर्थ क्या होता है? धान है, वो तो पुराने जो चावल होते हैं ना साल ऊपर की छाल से, उसको अज कहते हैं, क्योंकि वो फिर उगते नहीं है बोने पर, इसलिए उसको अज कहते हैं। तो वो डालना चाहिए अजन्म, ऐसा उसको अज कहते हैं, पर अज का दूसरा अर्थ होता है बकरा। तो ये जो ब्राह्मण का पुत्र था उसने वो गलत अर्थ कर दिया। अब गलत अर्थ किया तो उसके मित्र ने कहा ये ऐसा अर्थ नहीं है, इसका सही अर्थ ऐसा ऐसा होता है। तो राजा के पास पहुंचे, तो राजा के पास वो जो उनकी जो गुरु माता थी, तो अरे अपने पुत्र ने तो गलत बताया उसको पता था, परंतु अभी अगर वो गलत सिद्ध हो जाता है तो अपनी इज्जत क्या रहेगी, इसलिए वो राजा के पास पहुंची। जो शिष्य था पहले उनका वो अभी राजा बन गया था, तो उसको ऐसे ऐसे समझाया कि जो कल ये दोनों आएंगे राज्यसभा में और उनमें आपस में जो मतभेद होगा तो कह देना कि ये जो गुरुपुत्र जो कहते हैं वो सही है, इतना ही तुम बता दो, तो यही मेरी गुरु दक्षिणा है, ऐसा कहकर उसको बता दिया। अब दूसरे दिन वही हुआ, सब राज्यसभा में पहुंच गए, तो उसको पता था कि असत्य है, फिर भी उसने उसको हाँ कह दिया। हाँ कह दिया तो क्या है, खाली इतना असत्य के कारण वो नरक में चला गया? क्यों नरक में चला गया? क्योंकि उससे आगे आने वाली पूरी जो अभी तक जो चल रहा है कि जो उसमें तो बलि देते हैं पशुओं की, उसकी प्रथा वहां से शुरू हुई, जो एक गलत अर्थ करने से वो सारी गलत प्रथाएं शुरू हुई, तो उस पाप के कारण वो नरक में गया। ये आता है ना उसमें, यहाँ लिखते देखो कि असत्य वचन से संसार में मिथ्या शास्त्रों का प्रचार हुआ है। 363 पाखंड की प्रवृत्ति, ये जो 363 मत बता रहे, वो क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, उसके बहुत सारे भेद है, ये सारे ही पाखंड मत है, इस असत्य वचन द्वारा ही हुई, क्योंकि असत्य की रचना हो गई है। अब उस जमाने में इतने थे, अभी हर रोज कितने कितने नए नए पंथ और अपने अपने मति कल्पना से क्या क्या निकलते हैं, कि जिसके की जाल में फंसे असंख्य प्राणी हिंसादी घोर पापों का आचरण कर रहे हैं। कि जो अन्य जो मिथ्या मत है, इतने इतने सारे अन्य अन्य जो पंथ निकले हैं और उसके कारण ये उलट गलत रास्ते पर चल रहे हैं। नरसंहार करने वाले संग्राम इस असत्य वचन से ही प्रारंभ होते हैं। यदि मनुष्य शांत चित्त होकर पूर्वापर ने पहले पश्चात हिताहित का विचार कर वचन निकाला करे, प्रिय मधुर और स्वपर हितकारक वचन बोला करे, तो यह मर्त्य लोग स्वर्ग समान बन जावे। असत्य वचन बोलने में तो आत्मा के स्वाभाविक भावों को दबाने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती। क्या कहा? असत्य वचन बोलने में अधिक शक्ति व्यस्त होती है, सके आत्मा कुंठित होता है, और सत्य वचन उच्चारण करने में आत्मा को आह्लाद होता है। उसका प्रभाव सब सुनने वाले जीवों पर स्वतः विदित हो जाता है। असत्य भाषी स्व और पर की हिंसा करता है, क्योंकि असत्य बोलने समय वो तो स्व का ही घात होता है, मायाचारी तो चलती है और पर का तो घात होता ही होता है, क्योंकि वह असत्य भाषण कर अपने सच्चे निराकुल भाव की हिंसा करता है। आकुलता तो उसके पीछे है ही है। और असत्य से सुनने वालों के चित्त में गहरी चोट लगती है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। इसलिए असत्य भाषी आत्मघाती और परघाती माना गया है। जो सत स्वरूप जो है, वस्तु का जो सत्य स्वरूप है, उसको स्वीकार नहीं करके जो असत्य बात बताते हैं, वो तो स्व का भी घात करते हैं और पर का भी घात करते हैं। इसलिए जब सत्य वचनामृत से अपनी व दूसरे की आत्मा को आनंद मिलता है और उसके लिए कुछ कष्ट भी नहीं होता। क्या कहा? सत्य बोलने के लिए कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है? क्या खर्चा होता है? खर्चा क्या करना है? बस बोलना तो है, तो पहले थोड़ा मीठा बोल, थोड़ा प्रिय बोल, थोड़ा सत्य बोल। दूसरे को खुश करने के लिए खोटा खोटा मीठा बोल ऐसा नहीं कह रहे, है ना? तो कहते कुछ कष्ट भी नहीं होता, तो इस अमूल्य अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करते? इस सत्य के आधार पर सब संसार के कार्य होते हैं, इसलिए सत्य के आश्रित सारा संसार ठहरा है, ऐसा अगर कही जाए तो ये कोई अत्युक्ति नहीं, यानी कोई अतिशयोक्ति नहीं। सत्य ही जीवन का आधार है और संसार के सब कर्तव्यों का मुख्य साधन है, इसलिए वचन बोलते समय पूर्ण सावधानी रखना योग्य है। देखो, यहाँ वचन की मुख्यता से ये सत्य धर्म का यहाँ सब पूरा ही कथन किया है, परंतु हमें सत्य धर्म का प्रकट करना है, क्योंकि वो वितराग स्वरूप है। धर्म वितरागता है, और वितरागता ये वचन रूप नहीं हो सकती, वो तो उसमें ज्ञान में, मान्यता में, आचरण में होगी। तो जो सत स्वरूप, यानी मैं सत्य स्वरूप हूँ, वितरागी स्वरूप मेरा कायमी स्वभाव है, और उस स्वभाव का हम लक्ष्य करेंगे, जो है उसका स्वीकार करेंगे। अभी क्या हो रहा है? किसका स्वीकार हो रहा है? असत्य का, कल्पनाओं का। क्योंकि हम अपने को कितना समझ के बैठे हैं, मैं मनुष्य हूँ और ये राग द्वेष यही मेरा स्वरूप है। यहाँ तो सात तत्व में कह रहे, मैं तो जीव तत्व हूँ और ये राग द्वेष वाला तत्व मुझसे जुदा है, परंतु ये सत्य स्वीकार नहीं करके ये असत्य में ही अपनी कल्पना करता है। क्या कल्पना उसने मान ली? कि ये आश्रव में से कुछ आश्रव तो अच्छे है और कुछ आश्रव बुरे है। कौन से अच्छे है? शुभ है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? उससे हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? उससे, क्योंकि हमने सुना है कि कर्म के, ये कर्म का फल से हमें अच्छे सहयोग मिलते हैं, ये पैसे की प्राप्ति भी पूर्व कर्म के या पुण्य के उदय से मिलते हैं, हमने सुन के रखा है। तो हम क्या चाहते हैं? पैसा। इसलिए क्या चाहते हैं? पुण्य का उदय। उदय तो उदय कब होगा? जब हम बांधेंगे तब। तो हम पुण्य करना चाहते हैं, कुछ उपवास आदि करें, दशरक्षण में रोज मंदिर के दर्शन लिए, या घंटे घंटे कुछ स्वाध्याय करें, थोड़ा तो पुण्य बंधेगा ना। हाँ, तो ये पुण्य के उदय में हमें अच्छे संयोग प्राप्त हो जाए, इसलिए उसके लिए कर रहे हैं। तो उसने क्या अच्छा माना? बंदे को अच्छा माना ना, क्योंकि उसका उदय चाहता है, पुण्य का उदय चाहता है। उदय कब होगा? जब बंदा हुआ तो उदय होगा, इसलिए उसने पुण्य का बंध अच्छा माना। जिसने बंध अच्छा माना तो उसको मोक्ष अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी उसकी मान्यता में क्या है? पुण्य ने आश्रव करने योग्य माना उसने, उपादेय माना, हेय नहीं माना। अभी ये अपनी बात नहीं हुई है, हेय क्या है, उपादेय क्या है। हेय ने छोड़ने लाए, उपादेय ने यहाँ करने लाए और प्रकट करने लाए या आश्रय करने लाए। परंतु उसने पुण्य और पाप को कैसे माना? अरे पाप तो जाने दो, छोड़ने लाए। पुण्य कैसा है? करने लाए। क्यों? उसके फल में मुझे कुछ अनुकूलता मिल जाएगी। मुझे ने किसको? इस मनुष्य पर्याय को, ये शरीर रूप में हूँ उसको अनुकूलता लगेगी, ऐसा उसका भ्रम है। क्योंकि पुण्य जिस फॉर्म में बंधा है उसी फॉर्म में वो टिका रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझे? कभी किसी ने अपनी जमीन जायदाद दे के बहुत अच्छा मंदिर खड़ा कर दिया और क्या क्या कर दिया, और फिर बाद में आपने तो मालूम है अभी जमीन के भाव कैसे क्या हो गए, बाद में क्या सोचता है, अरे मैं नहीं देता तो आज उसकी कीमत कितनी होती, इतनी अबजों की वो संपत्ति हो जाती है। तो क्या होता है, वो बांधा हुआ क्या होता है, वो पाप में टर्न हो जाता है। क्योंकि कोई ऐसा है ना, ये तो संक्रमण जिसको कहते हैं, वो कर्मों की थ्योरी हमको मालूम नहीं है। जैसे हमारे वर्तमान पर्याय के जो परिणाम हो रहा है, हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, तो वर्तमान में तो कर्मों का बंध होता ही होता है, उसी भावों से पूर्व में बंधे हुए कर्मों में भी उलट पुलट होती है। हाँ, वर्तमान में पुण्य परिणामों से पूर्व के पाप भी कुछ तो टर्न हो सकते हैं, और पहले पुण्य करके बांधा है हमने क्योंकि काम आएगा इसलिए हमने बांध के रखा है, तो कहते वर्तमान में ऐसे कुछ खोटे परिणाम होते हैं कि पूर्व में बंधा हुआ पुण्य भी पाप रूप टर्न हो जाता है। यानी जिस फॉर्म में बंधा है उसी फॉर्म में उदय में आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समझ आते हैं ना? तो हमें तो ये सारा असत्य है ना। क्या असत्य है? जैसा अपना स्वरूप है वैसा उसने स्वीकार नहीं किया है, और अन्यथा उसने स्वीकार कर दिया। जो आश्रय और बंध, जो है या नहीं छोड़ने लायक है, उसको कैसा असत्य मान लिया, वो करने लायक मान लिया। पाप को भी करने लायक कोई मानते है कि नहीं मानते? हाँ? नहीं मानते। हाँ? अरे झूठ बोले बिना क्या गंदा होता है? कैसा कहते कि नहीं, लौकिक में झूठ बोलने से सब काम आसान हो जाता है, सत्य बोलने से थोड़ी आसान होता है। अभी हमारी बात छोड़, ये सब हिंसाचार जो चल रहा है, ये जो बॉम्ब हल्ले वगैरह करते हैं ना टेररिस्ट जो है, वो क्या कर रहे, पाप करके हाँ और अच्छा मानते हैं, धर्म के नाम पर कर रहे हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसे उनकी मान्यता है ये करने से। ये क्या है सारा? तो कहते इसीलिए हमें तो भगवान ने जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग बताया है वो तो प्रमाण है, सत्य है, उसको हमको स्वीकार करना है। हमें तो उस पर डाउट लगता है कि इसके लिए प्रूफ क्या है। तो यहाँ पूना में जो सूर्य उगता है तो कौन सी टॉर्च लेकर नक्की करते हैं सूर्य उग क्या नहीं होगा, बोलो। अब अमेरिका में तो कोई दूसरी टॉर्च होगी, यहाँ कौन सा टॉर्च लग के देखते हैं? कौन सा टॉर्च? नहीं लगता, क्योंकि सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है, उसके प्रकाश में सब दिखाई देता है। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के जो वचन है वो स्वयं प्रमाण है, उसके लिए अन्य प्रमाण यानी अन्य प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। इसे एक दो बार में अनेकों बार हमारे शास्त्रों में लिख के रखा है मुनियों ने। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के वचनों को ही हमको स्वीकार करना है चारों ही अनुयोगों के द्वारा। तो उसके अनुयोग पढ़ना कैसे, उसमें से अर्थ निकालना कैसे और अपना कल्याण कैसे करना है, ये एक बार हमको ट्रिक मिल जाए तो उसके द्वारा, चारों ही अनुयोगों के द्वारा हम वीतरागता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वीतरागता हमें और आपको प्राप्त करनी है। ये जो सत्य धर्म की बात यहाँ हो रही है तो सत्य जाने बिना सत्य करेंगे भी कैसे? इसलिए सत्य जो हमें उपदेश मिला है भगवान के द्वारा उसको ग्रहण करके हम सत्य स्वरूप समझेंगे। अपने सत्य स्वरूप को समझना है तब धर्म की शुरुआत होगी। केवल सत्य बोलने से कोई धर्म शुरू होने वाला नहीं है, वो तो शुभ भाव रूप है और वो होता है। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल असत्य बोलता रहे और उसको धर्म प्रकट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। समझ में आती है ना बात? इसलिए अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है और अपने सत्य स्वरूप में ही एकाग्र हो जाना है, तब पर्याय में वो धर्म प्रकट होगा, वितरागता प्रकट होगी, तब हमने सत्य धर्म प्रकट किया, ऐसा कहेंगे। और उत्तम शब्द इसलिए लगाते हैं कि मुनियों की ये वितरागता है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न हुई है, इसलिए उनको ये सभी जो दसों लक्षण जो है उसके पीछे उत्तम शब्द लगाते हैं, तो मुनियों की अपेक्षा ये लगाए जाते हैं और उसकी चर्चा। अब इसमें कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना, इतना समय तो हो गया है। देखो ये हमने चार की बात आई थी, उसमें कर्णानियोग का कथन, द्रव्यानियोग का कथन, चरणानियोग, प्रथमानियोग में तो कोई बात ही नहीं, जो उसमें तो जो हुआ है वही बताते हैं, उसमें तो कोई असत्य की बात नहीं आती, इसमें तीन ही की बात बताई है, उसमें कर्णानियोग में दो बताए, द्रव्यानियोग में और चरणानियोग में। कर्णानियोग के दो कैसे, जो विद्यमान है उसको नहीं मानना, उसका निषेध करना, और दूसरी बात जो अविद्यमान है उसको प्रकट करना, वो दो प्रकार के, बस द्रव्यानियोग का एक है, चरणानियोग में सारे गर्हित वचन, सावध्य वचन और अप्रिय वचन, उसके बहुत सारे भेद प्रभेद बताए, क्योंकि खाली उसकी लिस्ट बनाने से कुछ आपको, क्योंकि आपके हाथों में पुस्तक नहीं है, इसलिए मैंने उसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ बताई है। ये रत्नकर्ण शाकाचार्य ने बहुत और भी बहुत ज्यादा उसके विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब हम यही रुकते, कोई प्रश्न है हाँ, आप ऐसा कहते, किसी को पता नहीं है उसने बता दिया, किसके बारे में बताया, जनरल थोड़ी बहुत ऐसी कोई जो चीज है, मुख्य बात यहाँ लेना है कि जैसे पता नहीं है और उसने बता दिया कि अमुक अमुक करो तुम्हें धर्म हो जाएगा, वो तो महाअसत्य है। घर के बारे में कोई कोई चीज यहाँ रखी है, आपको मालूम नहीं थे वो समाप्त हो गया, आपने कह दिया ये फिनिश हो गई, मेरे पास सही नहीं है, जानबूझ कर कहना वो बात अलग है, और आपको मालूम नहीं था इसलिए कहना वो बात अलग है, परंतु वो इतना बड़ा दोष नहीं है, परंतु जो धर्म की जो बातें है, जो उसमें जो मिलावट करके असत्य कह देना, कुछ बातें तो धर्म की ऐसे, वो तो क्या है रत्नत्रय अमुक है वही से वैसे शब्द दे देते हैं और उसमें अपनी मति से राग करते रहो, पुण्य करते रहो, पुण्य करते करते तुम्हें धर्म हो जाएगा, ये असत्य वचन है। समझ में आती है बात, ये जो प्रयोजनभूत बातें है उसमें असत्य वो अधिक महादोष है, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी कोई उपदेश दे रहा है ऐसा खोटा, तो सुनने वाले वो उसको सत्य मान रहे हैं, तो उनके तो वो तो असत्य मानेंगे, या हमने ऐसे कोई झूठ रचना कर दी, लिख दी, तो वो तो परंपरा चलने वाली है, तो कितना महान दोष हो जाता, इसलिए हमारा कर्तव्य कि सत्य जानना चाहिए। मालूम नहीं है इसलिए किसी, हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं छोटे छोटे बच्चे एक डेढ़ साल के, क्योंकि घरों में ऐसे बाटली वगैरह भरी रही थी तो केरोसिन की बाटली उठाकर पीते हैं, हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनको मालूम नहीं था और पिया, तो उनको थोड़ा कम इफेक्ट होगा कि नहीं, क्या होगा, मालूम नहीं इसलिए विष पिया तो भी उसका उतना इफेक्ट होने वाला है, इसलिए कर्तव्य क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है इसलिए कायदे में से कुछ छूट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका से आए तो यहाँ के रूल मालूम नहीं है, तो यहाँ के रूल मालूम करना होगा आपको। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान ने बताई हुई बातें हैं धर्म के बारे में जो बातें हैं, और हम उपदेश करने बैठे हैं और वो झूठ अगर उपदेश देते हैं, या अपने हमने कोई झूठ कह भी दिया मान लेते हैं, पर तो बाद में पता चला रही है तो झूठ था, पर अभी अभी उसको स्वीकार करेंगे तो अपनी इज्जत क्या रहेगी, पब्लिक क्या मानेंगे, इन्होंने झूठ कह दिया, समझना है, तो वो झूठ चालू रखना। गोमर साहब में ऐसी गाथा है, उसमें ऐसा आता है कि अपने कुछ अजान मानो गुरु नियोग, यानी हम जिस गुरु से पढ़े थे उन्होंने कोई ऐसी बातें बता दी, अभी सात तत्व संबंधी नहीं, कोई अन्य बातें कि जो गणित संबंधी या कर्णानियोग संबंधी जो हमने सच्ची मानी थी और हमने उसको मान लिया, ऐसे जीव को समय दर्शन हो सकता है क्योंकि उसके सात तत्व संबंधी कोई भूल वगैरह तो है नहीं, परंतु यदि उसके कथन को कोई कहते हैं आगम ऐसा है, आगम में ऐसा लिखा है, आगम में ऐसा लिखा है, फिर भी जो नहीं मानता है घटपूर्वक, उसी समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए जहां आगम हमारे साथ प्रूफ है तो उसी को हमें स्वीकार करना है। किसी व्यक्ति विशेष ने बताया है और उस कुछ आगम से कुछ विरुद्ध होता है, इसलिए उसको नहीं मानना, वो बात नहीं है। यानी वो व्यक्ति विशेष भी होगा, वो भी अगर आगम से अगर कोई उसकी भूल यानी चूक जो हुई है वो अगर उसको कोई निर्देशन करता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इतनी तो सरलता होनी चाहिए कि जिन आगम है उसके साथ अपनी ओर से कुछ भी
हमारे गुरु की अभिनय नहीं हो जाएगी,
कैसी होगी?
उसने बताया था,
उसने बताया था, वो इतना ज्ञानी नहीं था और हमने उसको भगवान की आज्ञा मानकर स्वीकार कर दिया है। करणानियों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें होती है हमारे पुस्तकों में, ऐसे अभी वो तो निषेक वगैरह बहुत के अनुभाग सभी निषेकों में जो कुछ होते हैं, हम नीचे के निषेकों में कम होता है ऊपर ज्यादा होता है, हम ही स्वयं मानते थे। बाद में जब हमारा अभ्यास हुआ तो समझ में आ जाएगा कि ये बातें गलत थी, तो हम उसको स्वीकार करते, हम बोल देते हैं कि हमारे पहले पुस्तकों में ऐसा हुआ। अभी पुस्तकों में अक्षर यानी वाक्य रखकर उसके ऊपर लाइन मार दिए प्रिंटेड में कि लोग समझे कि पहले ऐसा लिखा था, ये गलत था। यानी अपनी अगर भूल होती है किसी कारणवश तो स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि वो गलत परंपरा आगे ना बढ़े, क्योंकि हम उसके लिए जिम्मेदार है जिसने बताया है। अभी जो बोल चुके हैं सीढ़ी में उसकी वो कौन सुधारेगा? पुस्तकों में तो सुधारने की कोई गुंजाइश भी होती है, इसलिए ये जीवों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सत्य जो आगम के अनुकूल ही होना चाहिए, आगम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न है क्या? हम यहाँ रुकेंगे, हो गए अपना समय, बोलो चौबीस भगवान।
सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक।